बहुत बढ़िया। वैसे उस काम का नाम कहीं कशिश तो नहीं? अमरेंद्र जी ने गहरी निगाहों से ईशान को देखा। शायद कुछ जानते थे वे और ईशान की चोरी पकड़ भी चुके थे। उनकी बात सुनकर ईशान सकपका गया, फिर झट से अपनी झेप मिटाते हुए बोला, क्या जीजा जी, आपको भी तंग करने को मैं ही मिला। कशिश से मिलने क्यों आऊँगा, वो तो घर पर ही रहती है, जब भी आऊँगा उससे मिल ही लूँगा। हाँ, तभी तो मेरी आपकी नज़रों में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही होती है, और अब तो आप बाहर के गोश्त का मज़ा लेने लगे हैं। ये आवाज़ कशिश के दिल से निकली थी। आवाज़ बाहर तो नहीं आई थी, पर कशिश तीखी नज़रों से ईशान को घूरने लगी थी, जिसका एहसास ईशान को भी था। उसने चोर नज़रों से कशिश को देखा, फिर अमरेंद्र जी का रुख किया। जीजा जी, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ, फिर आपके साथ बैठूँगा। अमरेंद्र जी ने उसकी बात सुनकर सहमति में सर हिला दिया। ईशान मुस्कुराया, फिर कशिश की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोला, कशिश, एक कप चाय और कचौड़ी लेकर कमरे में आओ। इतना कहकर ईशान सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी कशिश ईशान की यूं ऑर्डर झाड़ने से और ज्यादा खींच उठी थी, और उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरना शुरू कर दिया था, मानो कि बस उसके बस चलने की देर थी और वो ईशान को कच्चा ही निगल जाती, पकाने तक की जहमत ना उठाती। कशिश जी, कशिश के बगल में खड़े दिनेश ने कशिश को पुकारा। तब कहीं जाकर कशिश ने ईशान को घूरना बंद किया और दिनेश की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी ज़रा ज़िले इलाही को उनकी चाय कचौड़ी दे आऊँ, वरना कमरे से ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देंगे जनाब। कशिश का मूड अभी कुछ उखड़ा हुआ था और वो थोड़ी खींची हुई भी लग रही थी, जिसे देखते हुए दिनेश ने गंभीरता से सवाल किया, अब तक आपके और ईशान के बीच की परेशानी हल नहीं हुई? दिनेश को यूं परेशान होते देखकर कशिश बेफिक्री से मुस्कुराई, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारा तो ये सब चलता ही रहता है, अब मैं चलती हूँ। दिनेश ने बस सर हिला दिया। कशिश पहले किचन में गई और सबके लिए कचौड़ी निकालकर शुभ्रा और शुभिका के हाथों सबके लिए कचौड़ियाँ भिजवा दी। फिर उसने चाय बनाई और एक कप चाय और कचौड़ी की प्लेट ट्रे में रखकर वहाँ से निकलकर ईशान और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में पहुँची तब तक ईशान हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल चुका था। कशिश उससे नाराज़ थी, इसलिए अपना गुस्सा और नाराज़गी दिखाते हुए उसने ट्रे पलंग पर रखी, फिर ईशान को तिरछी नज़रों से घूरते हुए मुंह बनाकर कमरे से बाहर जाने को मुड़ गई। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसके कानों में ईशान की नर्म आवाज़ टकराई, कशिश, क्या है, अब और कौन सा हुक्म सुनाना है आपको मुझे? कशिश ने उसके पुकारने पर उसकी तरफ पलटते हुए उखड़े अंदाज में खींचते हुए सवाल किया और मुंह बनाए उसे घूरने लगी। जहां कशिश अभी बेहद गुस्से में थी, वहीं ईशान ने बेहद शांत लहजे में कहा, यहाँ आओ और बैठो मेरे पास। फालतू वक्त नहीं मेरे पास, आपके पास बैठकर आपको निहारने के अलावा भी बहुत से ज़रूरी काम है मुझे। एक बार फिर कशिश ने बेरुखी से जवाब दिया, फिर उस लड़की को याद करते हुए तुनकते हुए बोली, एक काम कीजिए ना मिश्रा जी, अपनी उस खास ग्राहक को बुला लीजिए, वो शौक से ताड़ेगी आपको। कशिश ने एक बार फिर सीधे तौर पर ईशान को ताना मारा था। ईशान भी उसके टॉन्ट को समझ रहा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से बोला, कशिश, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे बीच किसी तीसरे को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक ग्राहक है मेरी, इसके अलावा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, और मैं तुम्हें सफाई दे चुका हूँ। अगर अब भी तुम नाराज़ हो तो मैं बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि अगली बार जब वो दुकान आएगी तो मैं उसे साफ साफ शब्दों में बता दूंगा कि मुझे मिश्रा जी कहकर पुकारने का और मुझे प्यार से देखने का हक सिर्फ मेरी पत्नी का है, तो अपनी नज़रों को मुझसे ज़रा दूर रखें। अब तो अपनी नाराज़गी छोड़ दो। क्यों, जो आपने सबके सामने उसकी तरफदारी की, मुझे गलत ठहराकर उससे माफ़ी मांगने को कहा, सबके सामने अपनी पत्नी की इंसल्ट की, उसका क्या? कशिश ने भौं उछालते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर ईशान ने एक बार फिर गंभीरता से जवाब दिया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, अब खुश? ईशान ने बात खत्म करनी चाही, पर कशिश इतनी आसानी से माफ़ करने के मूड में नहीं थी, उसने बुरा सा मुंह बना लिया। ईशान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। कशिश के नखरों से अब वो परेशान हो चुका था। कशिश का पूरा ध्यान अपनी कलाई पर था। ईशान उसे पलंग के पास ले आया। कशिश भी बिना विरोध किए उसके साथ चलती गई। ईशान ने उसे बेड पर बिठा दिया, फिर कचौड़ी की प्लेट उठाकर चम्मच कशिश की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर कशिश की आंखों की पुतलियां फैल गईं और लबों से हैरानी से निकला, ये आपकी है, फिर आप मुझे क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया था और लाया भी तुम्हारे लिए ही था, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसलिए अभी के लिए अपनी नाराज़गी छोड़ो और खाकर बताओ कैसा है। कशिश कुछ पल हैरान परेशान सी उसे देखती रही, फिर ईशान के दोबारा कहने पर उसने मुंह खोलकर कचौड़ी का एक बाइट खा लिया और अगले ही पल चहकते हुए खुशी से उछल पड़ी, यम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। अब एक पल में कशिश का सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी गायब हो चुकी थी। ईशान का तरीका काम कर गया था और उसकी खुशी से खिला क्यूट सा चेहरा देखकर ईशान के लबों पर अनायास ही मुस्कान फैल गई थी। ईशान ने अपने हाथों से उसे कचौड़ी खिलाई, जिसे कशिश ने भी चहकते हुए बड़े ही चाव से मजे से खाया। कशिश को कचौड़ी खिलाने के बाद उसने अपनी चाय का कप उठाया, पर इससे पहले कि वो चाय के कप को अपने लबों से लगा पाता, कशिश ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया। क्या हुआ? ईशान ने चौंकते हुए सवाल किया, जिस पर कशिश ने उसके हाथ से कप लेते हुए जवाब दिया, ये चाय ठंडी हो गई होगी, आप 5 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ, कशिश ने जल्दबाजी में कहा और पलक झपकते ही चाय का कप लेकर कमरे से गायब हो गई। ईशान को उसने कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया। वो तो कुछ समझ ही नहीं सका कि आखिर ये उसके साथ अचानक हुआ क्या। वो बस आंखें फाड़े हैरान परेशान सा उसे देखता ही रह गया। जब कशिश उसकी आंखों से ओझल हो गई तो निगाहों को झुकाते हुए उसने आश्चर्य से अपने आगे बढ़े हाथ को देखा, जिसमें कुछ सेकंड पहले तक उसने चाय का कप पकड़ा हुआ था। हाथ तो वही था पर कप गायब हो चुका था। मन ही मन उसने कशिश की बात दोहराई, फिर सर हिलाते हुए अपना बही खाता लेकर पलंग पर आकर बैठ गया। बीते दिन हुए खर्चों का हिसाब लिखने लगा।